22 जून प्रिय भक्तजन, आज 22 जून 2020 का शुभ दिवस आपके लिए मंगल में हो। प्रथम हम मंगलाचरण करते हैं। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम तविधरेडितम कलम शाप हम श्रवण मंगलम श्री मदात भूवी गणती ए भूरीदा जन। प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है, वह पाप पुंज को हरने वाली है, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है, वह परम मधुर तथा शुद्ध स्थित है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल पर वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। श्रीमद् भागवत 10:31। भजन, जैसा कि मैंने पिछले दिनों कुछ प्रसंग ऐसे सुनाए थे और आपको बताया था कि मुझे बचपन से ही अपनी भारत माँ के दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, बड़ी लालसा थी, और भगवान ने मेरी उस इच्छा को पूरा किया है। श्री महाराज जी के सत्संग में आने से मुझे अपनी भारत माँ के दर्शन साक्षात हुए हैं, और इस भारत माँ की सेवा के लिए भी मुझे थोड़ा सा अवसर श्री महाराज जी ने दिया। श्री माँ देवी तीर्थ ने मुझे अपनाया और श्री माँ देवी तीर्थ के माध्यम से ही मैं संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व की बन गई। वसुधैव कुटुम्बकम यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कॉलेज में जब पढ़ते थे तो कई बार हिंदी की मैडम मिस उषा के मुझे नाम याद आ गया, उनकी शक्ल भी याद आ गई, वो बड़े प्यार से समझाती थी वसुधैव कुटुम्बकम। तो उस वक्त समझ नहीं आती थी कि वसुधा तो है पृथ्वी और कुटुम्ब कैसे एक बनाया जाए, इसको कैसे एक बनाया जाता है, कैसे हम सब एक हो सकते हैं, पॉसिबल है या इम्पोसिबल है। पर शिव महाराज जी के सानिध्य में आने से मुझे पता चला कि ये बहुत ही पॉसिबल है, ये आसानी से हो सकता है जब हम अपने मन को अपने हृदय को विशाल बना लेते हैं, तो पूरी पृथ्वी पूरी वसुधा हमारी अपनी बन जाती है और उस पर रहने वाले जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक सबके प्रति हमारे हृदय में एक प्रेम की भावना आती है और हम सबको समान समझने लगते हैं। अब मैं आपको पिछली कल की कथा से जोड़ती हूँ। इस प्रकार हम रामेश्वर दर्शनों प्रांत फिर मंदिर में पहुँचे, जहाँ हमारी बस हमारा इंतजार कर रही थी। संध्या हो रही थी लेकिन यात्रा जारी रखी। 6 बजे साई बस चल पड़ी। रात्रि भर सफर करने के पश्चात हम प्रातः 10 बजे 16 जनवरी को पांडिचेरी पहुँचे। यहाँ पांडिचेरी में अरविंद आश्रम के दर्शन किए, अरविंद की समाधि स्थल तथा पुस्तकालय देखा, जहाँ की शांति वर्णा तीर्थ है। यहाँ कुछ पुस्तकें खरीदी। श्री अरविंद ने आध्यात्मिक जीवन की साधना तथा सिद्धि यही प्राप्त की थी। पांडिचेरी में भोजन आदि लेकर हम चल पड़े। रात्रि 10 बजे तिरुपति बाला पहुँच गए। रात्रि धर्मशाला में विश्राम किया। 17 जनवरी प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर वेंकटेश्वर के दर्शनों के लिए चले। दर्शनों के लिए एक लघु पहाड़ी पर जाना था, इसलिए सब भक्तों को स्वामी जी ने आज्ञा दी कि दर्शन कर आओ। शंभ नहीं समाधि में रहे हम सब पहाड़ी के ऊपर बने अति सुंदर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे और देखा हजारों दर्शनों से तो पंक्तिबद्ध खड़े हैं और हमारी बारी शायद रात्रि में आए। पूछताछ करने पर पता चला कि 25 रुपए का टिकट लेकर आधे घंटे में दर्शन हो सकते हैं। 25 रुपए सुनकर हमारे सभी भक्तजनों को थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ और सबको लगा कि 25 रुपए कहाँ से दे, जब एक परिवार में 4-4 व्यक्ति हैं तो 100 रुपया एकदम से खुल जाना था। और अब क्या करें, तो बड़ी देर सोच विचार के बाद कुछ परिवारों ने एक एक टिकट लिया, मुझे तो जाना था, मैं तो अकेली थी, मैंने अपना टिकट ले लिया या भरपूर मेरा टिकट ले लिया। तो कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने चार व्यक्ति थे तो एक टिकट लेकर चले गए और बाकी बाहर खड़े हैं। हम सब 25 रुपए का टिकट लेकर जब भीतर गए तो देखा सुव्यवस्था अति सुंदर है, भगवान विष्णु के भव्य और शांत दर्शन हुए, अति सुंदर गर्भगृह में मूर्ति विग्रह के आगे कोई धान या चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता, केवल अपना मन व प्राण ही प्रभु को अर्पित कर पाता है। मंदिर के एक और एक मुंडी है जिसमें दर्शनार्थी सदानुसार भेंट चढ़ाते हैं, रेलगाड़ी के ढेर लगे हैं, मानो महालक्ष्मी ही विराजमान है। मंदिर के बाहर आकर शहर देखा और कंटीन में भोजन खाया, कंटीन में भोजन खाते खाते वहाँ हमें दाल चावल और कड़ी मिली तो मुझे ऐसे लगा कि मैं मनाली में बैठी हूँ और दाल भात खा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना सुहावना और ठंडा सा था जैसे मानो हम किसी पहाड़ी स्टेशन पर हूँ। वहाँ पता चला कि 4 किलोमीटर की दूरी पर पापनाशिनी गंगा है, वहाँ नहाने से सब पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए हम गाड़ी पकड़ कर वहाँ गए। परंतु गाड़ी पापनाशिनी के मुख्य स्रोत तक नहीं जाती, इसलिए लगभग 1 किलोमीटर पहुँच कर देखा कि एक छोटी सी पहाड़ी से निर्मल जल का फुवारा निकल रहा है और उस फुवारे को देख कर मुझे अपने कुल्लू हिमालय पर्वतों से निकलने वाले वो जो ग्लेशियर से निकलते हैं वो झरने कल्पना में आ गई कि हमारे कुल्लू में जब हम लोअर वैली की ओर जाते हैं तो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से वो नाले बहते हैं और फुवारा बन करके निकलते हैं। कई तीर्थयात्री स्नान कर रहे थे वहाँ, कोई आचमन कर रहे थे और हमने भी आचमन किया, स्नान नहीं किया, वापस लौट आए, इसमें बहुत कम था। बहुत कठिनाई से बस में जगह मिली क्योंकि हम अपनी बस जो थी वो नीचे धर्मशाला में छोड़ रहे थे, अपनी बस को ऊपर पहाड़ी पे ले जाना इनकार था। मेरी छोटी छोटी बसें चलती थी, उन्हीं में बैठकर हम ऊपर आए थे। पापनाशिनी से हम तिरुपति बालाजी आए, वहाँ से दूसरी बस पकड़कर शहर में धर्मशाला में पहुँचे जहाँ स्वामी जी थे, रात्रि नहीं रहे। अब स्वामी जी के बारे में मैं क्या बताऊँ कि श्री महाराज जी कितने अधिक उस ऊंची स्थिति को, समाधि की स्थिति को पहुँचे थे कि वो सारा दिन 12 घंटे अपने कमरे में समाधि स्थिर रहे। बड़ी हैरानी होती थी, आकर देखते थे महाराज जी वैसे के वैसे हैं जैसे हम छोड़ गए थे। 18 जनवरी प्रातः हम अपनी बस द्वारा तिरुपति को नमस्कार कर आगे बढ़े, दिन रात चलते रहे। प्रातः 9 बजे 19 जनवरी को हम गोदावरी घाट पहुँचे, श्री महाराज जी की आज्ञा से बस रोक दी गई। श्री महाराज जी ने बताया कि यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम और पुराना तीर्थ स्थल है। आप सबको रामायण की अहल्या की याद तो आई होगी कि देखिए भगवान राम जी ने जब गौतम ऋषि के द्वार पर आए तो वहाँ एक पत्थर देखा और पत्थर को पैर में लगाया तो वो शिला नारी बन गई थी, वो हल्या थी। तो वो आश्रम हमको वहाँ पुराना तीर्थ स्थल देखने को मिला। सभी ने गोदावरी जी में स्नान किया और मंदिरों में जाकर पूजा की। स्नान करते हुए माँ को गोदावरी जी के गोमुख जहाँ की गोदावरी का आदि स्रोत है स्मृति हो आई। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हम त्र्यंबकेश्वर गए नासिक से और त्र्यंबकेश्वर से हम गोदावरी के उद्गम की ओर गए थे जहाँ हमें आदिवासी भी मिले थे। तो गोदावरी जी का इतना बड़ा पाठ देखकर, इतनी महान नदी देखकर मुझे वो स्मृति याद आ गई कि किस तरह छोटी सी छोटा सा पानी की कुल नदी क्या कहें कुल जैसी पहाड़ से निकल रही थी और वो किस तरह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई खाड़ी बंगाल में आकर के प्रवेश करती है। नासिक की पहाड़ियों से निकली गोदावरी यहाँ आंध्र प्रदेश में विराट रूप धारण कर बहती है। अब हमारी बस राजमुंदरी होकर विशाखापट्टनम की ओर चली। रास्ते में दिन का भोजन किया। लगभग 4 बजे हमारी गाड़ी चेक पोस्ट पर खड़ी कर दी गई। कागजात देखे गए और फिर आदेश हुआ कि 275 रुपए प्रति यात्री टैक्स दो। ये सुनते ही सब यात्री बहुत ही हैरान भी हुए, दुखी भी हुए। वहाँ 25 रुपए निकालना मुश्किल था प्रति व्यक्ति, और यहाँ 275 कैसे दिए जाए। इस पर उन्होंने बताया कि जब हमने महाराष्ट्र छोड़कर आंध्र प्रदेश में प्रवेश किया था तो टैक्स चुका दिया था, लेकिन चेक पोस्ट के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उस समय 1245 पे लेकर ये आदेश दिया था कि तुम एक सप्ताह आंध्र प्रदेश में घूम फिर कर दूसरे राज्य में चले जाना, लेकिन आपने पुनः आंध्र में प्रवेश किया है और टैक्स नहीं दिया, इसलिए टैक्स देना होगा। बातचीत करते हुए बहस भी हो गई और जगदीश और दीपेंद्र को 40 किलोमीटर दूर काकीनाड़ा पुलिस चौकी में जाना पड़ा। हम सभी उस विरान इलाके में बस के पास ही रहे। श्री महाराज जी ने मुझे कहा कि आप रात्रि भोजन की तैयारी करो। अब क्या किया जाए, इस अकेले स्थान में कहां से सामान लाया जाए, कैसे पकाया जाए। फिर हमने सलाह की कि कोई निखेल और फुल्का ठीक रहेगा। पास के गांव से चावल दूध और आटा खरीद कर ले आए। राजेंद्र दत्त बच्चों तथा बहनों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की। बस की एक और दो पत्थर लगाकर चूल्हा तैयार किया गया। खीर पकाई और फुलके बनाए जाने लगे, साथ ही भोजन खिलाना भी शुरू किया। बच्चे तथा महिलाएं भोजन खाकर बस में सुरक्षित बैठ गए। राजेंद्र सूद और श्री दत्त बस के बाहर खड़े होकर गुप्तेंद्र और जगदीश की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे रात्रि देवी ने अपने काली चादर से आसपास का स्थान लपेट लिया। साये साये की आवाज आने लगी। कोई 200 मीटर दूर जहाँ पेट्रोल पंप था प्रकाश दिखाई दिया। 9:30 पर गोपिंदर और जगदीश काकीनाड़ा से लौटे। उन्होंने बताया कि कोई फैसला नहीं हुआ, अगले दिन प्रातः फिर काकीनाड़ा जाना होगा, इसलिए रात्रि निवास बस में ही हुआ। श्री महाराज जी और मैं तथा दोनों तीन महिलाएं को हमें पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा कमरा निवास के लिए मिला। अतः जैसे तैसे रात्रि कटी। प्रातः काल उठकर सब ने शौच नाम से निवृत्त होकर अपनी अपनी जगह ले ली और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर भी बस में बैठ गए। अब हमारी बस काकीनाड़ा की ओर मुड़ी। काकीनाड़ा शहर में आकर बस एक दुकान के पास रुकी तो श्री महाराज बस से उतरे और दुकानदार से जाकर सेब खरीद लाए। बस के पास बैठा दुकानदार बड़ा दयावान था। उसने देखा बस हिमाचल की है, लोग भी भोले भाले हैं और ट्रांसपोर्टर बस इंस्पेक्टर बस में बैठा हुआ पुलिस चौकी में बस को ले जा रहा है। तो श्री महाराज जी से हिंदी में बातचीत की और कहा ये लोग बहुत बदमाश हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने यात्रियों को लूटने का धंधा बना रखा है, इसलिए आप एक पता नोट कर लीजिए, जैसे भी हो उस व्यक्ति से मिल लीजिए, वे बड़े प्रभावकारी हैं। श्री महाराज जी ने कहा नोटबुक में माता जी लिख लो। मैंने जल्दी से नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। दुकानदार लिखाने लगा श्री हिम्मत मल जैन सिल्क टेक्सटाइल्स काकीनाड़ा। बस चल पड़ी। हम बस में बैठ गए थे। पुलिस वाला जल्दी चलने के लिए हमें धमकाने लगा, लेकिन अभी राजेंद्र बाल कटवा रहा था। उसके जाने पर बस पुलिस कार्यालय में ले जाई गई। लगभग 2 घंटे तक कुछ ना बना तो बस को पुलिस चौकी के बाहर लाकर खड़ा कर दिया और हमसे कहा या कि अपना सामान निकाल लो क्योंकि बस थाना के भीतर ले जाएंगे। हम सब ने इसका विरोध किया और अपना सामान नहीं निकाला और न ही बस ले जाने दी। हम नहीं बस के इर्द गिर्द नंगी धरती पर बैठ गए और स्वामी जी ने गोपेंद्र तथा जगदीश भाई जी को हिम्मतलाल जैन की तलाश में भेज दिया। सारा दिन आपस में बातचीत करते हुए हमारा व्यतीत हुआ। कभी कभी कोई कोई तेलुगु भाषी वहाँ से निकलता तो श्री महाराज उससे तेलुगु में बात करते। श्री महाराज जी को तेलुगु में बात करते देखकर हमें आश्चर्य हुआ और हमें लगा कि श्री महाराज मूलतः तेलुगु भाषी ही हैं। दो माताएं आई, उनके साथ श्री महाराज की बातचीत हुई। जब वे तेलुगु में तो हमने श्री महाराज से पूछा कि माताओं ने क्या बात की। श्री महाराज जी ने बताया कि माताएं कह रही थी यात्रियों चलो हमारे घर चलो, रात्रि नहीं विश्राम करो। समय बिताना कठिन हो रहा था परंतु हम सब आपस में बातचीत करते और धीरे धीरे रात्रि में भी पदार्पण कर लिया। हम सब बस में जा बैठे और संकीर्तन करने लगे। लगभग 9 बजे श्री हिम्मतमल जैन अपनी कार द्वारा आ पहुँचे। कार से निकलकर जैन जी ने श्री महाराज जी को नमस्कार किया और आदर पूर्वक सब बातचीत सुनी और कहा आप हमारे साथ चले, मैं आपको बस के साथ ही लेकर जाऊंगा और जैन धर्मशाला में ठहराऊंगा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। श्री महाराज सहित हम सब बस में बैठकर आगे आगे और पीछे पीछे श्री हिम्मतमल जैन अपनी कार में चल पड़े। लगभग 1 घंटा पश्चात काकीनाड़ा शहर में बस रुकी, जहां एक स्वच्छ वातावरण वाले होटल में हिम्मतमल जी ने भोजन खिलाया और फिर जैन धर्मशाला में ले गए। यहाँ पर राजस्थान से 8-10 परिवार आकर बसे हुए हैं। वहाँ बस से उतरकर हमने अपना सामान उतारा और धर्मशाला में प्रवेश किया। श्री हिम्मतमल जैन वहाँ हमारी पूर्ण सुविधा का प्रबंध कर तथा वहाँ रहने वाले एक परिवार को हमारी जिम्मेदारी सौंप कर अपने घर चले गए। यहाँ राजस्थानी भक्तों का हिम्मतमल जैन जी का सेवा भाव वर्णनीय है, देखने योग्य है। वो कहेंगे कि अगले दिन कार्यालय में जाकर बस बंदी अगली बातचीत करेंगे। धर्मशाला में सारा सामान रखकर हमने स्नान किया, फिर कोई 20 कदम दूर रहने वाले एक जैन परिवार हमें अपने घर ले गए और स्नेह पूर्वक भोजन करवाया, जिसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। श्री हिम्मतमल जैन जाति बारी ये भी कह गए थे कि प्रातः बस आकर हमें घुमाने ले जाएगी और हम शहर घूम लेंगे, क्योंकि हमें तो धर्मशाला में ठहरा दिया गया था, बस फिर पुलिस चौकी में ही भेज दी गई थी क्योंकि वो पुलिस की कस्टडी में थी। कुछ राजस्थानी जैन परिवार यहाँ रहते हैं जिनका अपना एक संगठन है और उसके मुख्य श्री हिम्मतमल जैन हैं। यहाँ अभी ये जैन धर्मशाला बनाई गई है जिसमें जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर की एक धातु मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ एक पुजारी रहता है जो प्राय प्रातः साय पूजा करता है। राजस्थानी परिवार सायकाल सत्संग के लिए इकट्ठे होते हैं। बगल में ही हमें रहने के लिए स्थान मिला है। 20 जनवरी रात्रि को हम यहाँ ठहरे। 21 जनवरी प्रातः उठकर हम सब ने स्नान आदि किया और अपने वस्त्र धोए। धर्मशाला के बीच एक कुआं था इसलिए जल की असुविधा नहीं हुई। प्रातः का नाश्ता दोपहर का भोजन जैन परिवार ने ही घर ले जाकर करवाया। दिन के समय हम काकीनाड़ा शहर देखने गए। सायंकाल हमारी बस आ खड़ी तो जैन परिवार हमें काकीनाड़ा बंदरगाह दिखाने के लिए ले गया। काकीनाड़ा में एक छोटी सी बंदरगाह है। काकीनाड़ा शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। हम में से अधिकतर ने बंदरगाह के दर्शन पहली बार ही किए। ये छोटी सी बंदरगाह है। हमने देखा सामने जहाज आ रहा था। समुद्र के किनारे एक विशेष प्रकार के छोटे छोटे जल जीव पानी से निकल कर आते हैं, जिनके घोंगे होते हैं। ये घोंगे भी हमें प्राप्त हुए। बंदरगाह से लौटकर धर्मशाला में रात्रि भोजन किया। भोजन खाकर सबने कीर्तन किया, फिर सो गए। परंतु बड़े बड़े मच्छरों ने रात भर निंद्रा देवी को हमारे निकट आने नहीं दिया। 22 जनवरी प्रातः सबने उठकर स्नान तथा शोध से निवृत्त होकर नाश्ता किया। देखा बस भी आकर खड़ी है। आज सब लोग जैन जी के घर आमंत्रित है, इसलिए बस उनके घर की ओर मुड़ी। कोठी के बाहर बस से उतरकर जब सब घर के भीतर पहुँचे तो सामने श्री हिम्मत भर जैन श्री सोनी जी के स्वागत के लिए आगे बढ़े। इतने में एक अभूतपूर्व दृश्य, जो शायद भविष्य में भी कभी न घटेगा वो न घटा होगा, सबने देखा। श्री स्वामी जी श्री हिम्मत मल जैन जी को साक्षात्कार करते हुए दंडवत भूमि पर गिर पड़े। ऐसा लगा मानो कि भक्त राम जी के चरणों में गिर पड़े। उनका माथा जैन जी के चरणों से छू रहा था। उधर जैन जी ने भी कुशलता पूर्वक शीघ्र अपने दोनों हाथों से श्री स्वामी जी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। श्री स्वामी जी के नेत्र रश्मि पूर्ण थे और वे कह रहे थे, यही है मेरे भगवान। कुछ देर इसी तरह दोनों प्रेम बंधन में बंधे आंसू बहाते रहे। इस अपूर्व दृश्य ने मेरे मन को कहा कि श्री महाराज जी तो साक्षात भगवान के अवतार ही हैं, पर ये जैन हिम्मतमल जैन जी भी करुणा के अवतार हैं। ये भी जैन धर्म से पूरी तरह सेवा दया नम्रता प्रोपकारिता से संचित हैं। उन्हें लगा कि जैन धर्म के प्रवर्तक जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि में प्रेम द्वारा मानव मन को जीतने व सेवा तथा परोपकार द्वारा चित्त शुद्धि करने का उपदेश दिया, उन्हीं भगवान महावीर का श्री महाराज जी में भावावेश हुआ है। श्री महाराज जी ईश्वर अवतार हैं और भगवान महावीर के प्रत्यक्ष दर्शन आज मैंने उनमें किए। संघ के सभी साथियों को भी उन्होंने मैंने श्री महाराज जी के बारे में बताया। श्री जैन सबको 5 सितारा होटल में ले गए और शुद्ध वैष्णव भोजन करवाया। वैष्णव श्री महाराज जी के साथ ही बैठे। बस को दिन भर की छुट्टी मिल गई, इसलिए सायंकाल ही वापस जाना है। जैन जी ने श्री महाराज जी के भाव को पहचाना और मन ही मन उनके भक्त बन गए। उन्होंने आग्रह किया कि उनके निर्माणाधीन नव भवन में भी श्री महाराज जी अपना पदार्पण करें, अपने चरण लाए। भक्त की इच्छा रखते हुए श्री महाराज सब भक्तों को लेकर श्री जैन के साथ 4 किलोमीटर दूर बस द्वारा गए। उस अर्ध निर्मित भवन के भीतर बाहर दोनों ओर चरण स्पर्श करवाने के लिए श्री जैन ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की और उन्होंने बारी बारी से कमरों और बरामदों में पदार्पण किया। लगभग 4 बजे सब ने जैन जी से भावभीनी विदाई ली और हम वापस आए और साथ ले आए हम अपने साथ ले आए जैन धर्म का एक जीवित आदर्श। 22 तारीख रात्रि लगभग 10 बजे सब विशाखापट्टनम शहर में पहुंचे। हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और कुछ बताना चाहूंगी कि उन दिनों काकीनाडा में हमारे हिमाचल से नालागढ़ से ही एक युवक थे जो वहाँ डीसी की पोस्ट पर नियुक्त हुए थे। जैन जी ने स्वामी जी को बताया कि आप तो हिमाचल का ही यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं, तो आप उनसे मिलना चाहेंगे। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, हम चलेंगे। तो उन्होंने डीसी साहब को फोन किया और डीसी साहब ने कहा ठीक है, हिमाचल के सभी यात्रियों को ले आओ। और हम हमारी बस उनकी कोठी पर गई। डीसी साहब ने हमारा सबका स्वागत किया और साय का चाय पानी भी पिलाया था। आज इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए गीता माँ जय माता दी।